بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی نوعیت کیا ہے, اور اگر ہم ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں اس کو دیکھیں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کیسے ہیں اور کیسے رہے ہیں, تو ہمیں یہ اندازہ کرنے میں کوئی مشکل نہیں کہ یہ ایک نیو کولونیزم کا شکار ہوا ہے پاکستان, اور بریٹن سے آزادی کے بعد پاکستان حقیقی معنوں میں انڈیپینڈنٹ نہیں ہوا بلکہ ایک اور طرح کی نو آبادیاتی ریاست جو ہے وہ بنا ہے. اور یہ تعلقات دو قوموں کے اور دو کنٹریز کے باہمی برابری کی بنیاد پر ہونے والے تعلقات نہیں ہیں, بلکہ یہ تعلقات ایک غلام اور آقا ہی کے تعلقات تھے جن کو مختلف روپ اور مختلف رنگ جو ہیں وہ دیے جاتے رہے. ان کا کلائمیکس اگر ہم کہیں پہلے مرحلے میں اس کا کلائمیکس, تو وہ ہمیں ایوب دور کے اندر نظر آتا ہے کہ جب پاکستان کے اندر امریکی ڈپلومیٹس جو تھے, بالخصوص امریکی سفیر, وہ پاکستان کے اندر ایک وائسرائے کی حیثیت رکھتا تھا, پریزیڈنسی کے اندر بھی اس کے لیے آنا جانا وہ روٹین کی بات تھی اور اس کے لیے کوئی باقاعدہ پروٹوکولز نہیں تھے, اور پاکستان کے کئی خواہ وہ پولیٹیکل افیئرس تھے, خواہ وہ اکنامک افیئرس تھے, اسی طرح میڈیا کے افیئرس, بہت ساری چیزیں پریکٹیکلی ان کے ہاتھ میں تھیں. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ضیاء کے پیریڈ کے اندر ان تعلقات نے ایک اور جہت اختیار کری, اور علاقائی انٹرسٹ کی بنیاد پر ایک نئے طرح کا الائنس جو ہے وہ وجود میں آیا, جس میں بھی ہم نے سرو کیا, جس میں بھی ہم نے ان کے اہداف کے لیے سرو کیا. اور پھر مشرف دور کے اندر آپ ایک تیسرا جو ہے وہ کلائمیکس اس کا دیکھتے ہیں. میں یہ عرض کروں کہ پاکستان نے انفارچونیٹلی, اگر آج آپ انالیسس کریں کہ پاکستان اس وقت امریکہ کے ساتھ کس نوعیت کے تعلقات رکھتا ہے, تو پولیٹیکلی پاکستان امریکن بلاک کے اندر ہے, ملٹیرلی پاکستان اپنے اکوپمنٹ, اپنے F-16 جیسے جن کے اوپر پاکستان ڈیپینڈ کرتا ہے, طیارے, اور پاکستان کی اوورال جتنی بھی مشینری ہے جو ملٹری سے ریلیٹڈ ہے, اس ساری میں پاکستان مجبور ہے کہ وہ امریکہ کے اوپر ڈیپینڈ کرے. تو ملٹیرلی بھی پاکستان امریکہ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کے علاوہ ملٹری جو الائنسز ہیں اس کے اعتبار سے بھی پاکستان امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں اکنامیکلی پاکستان نے بہت تیزی سے اپنے آپ کو امریکہ کے ساتھ وابستہ کیا ہے, اور امداد اور مختلف جو ان کی طرف سے فنڈنگ ہے اس کے نام پہ پاکستان نے اپنے بجٹ تک کو ان کے ساتھ ایسوسیٹ کر لیا ہے. امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا ڈونر ہے, اور دنیا میں تیسرا بڑا کنٹری ہے جس کو امریکہ فائنانس کرتا ہے. تو اس وجہ سے بھی پاکستان کی آئندہ کی جتنی پالیسیز بن رہی ہیں, اب ان پالیسیز کے اندر یہ بات ایک طے شدہ حقیقت کے طور پر ہے کہ پاکستان ان کی فائنانس کی بنیاد پر پاکستان کے اندر اپنی پالیسیز ترتیب دیتا ہے. تو اس لحاظ سے بھی ان کا امپیکٹ بڑا گہرا ہے. اور بعض دیگر پہلو کہ آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جو ڈپلومیٹ سب سے زیادہ آزاد, سب سے زیادہ متحرک اور سب سے زیادہ ڈومیننٹ پوزیشن رکھتے ہیں وہ امریکنز کے وہ رکھتے ہیں. پہلی اگر ہم بات کریں آئیڈیل کیا ہے, تو پھر ہمیں اس کو انالیسس کرنا زیادہ آسان ہوگا. آئیڈیل یہ ہے کہ افغانستان کے معاملات میں ہم اور خطے کے دیگر ممالک یہ نیوٹرل ہو جائیں, لیٹ دیم ڈو دیئر ورک, اور افغانستان کی پولیٹیکل سسٹم کو مضبوط کرنے, اسٹرینتھن کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. افغانستان کو بھی یہ مجبور کیا جائے کہ وہ خطے کے دیگر ممالک کے اندر کسی طرح کی کنفرنٹیشن میں انوالو نہیں ہو. اور تیسرا یہ کہ اس خطے کے اندر سے فارن فورسز کا فوری انخلا. یہ تین نکات, ایک افغانستان کے حوالے سے, ایک نیبرنگ کنٹری کے حوالے سے, اور ایک جو باہر کی پاورز ہیں یہاں پر ان کے حوالے سے, یہ ہے آئیڈیل صورتحال. اور انہی تین اہداف کی اچیومنٹ کے لیے آپ کی فارن پالیسی ہونی چاہیے. اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ایران نے بہرحال ایک کنٹینیوٹی بھی رکھی ہے اپنی فارن پالیسی کے اندر, اور اس کے ریزلٹس بھی لیے ہیں. ایک وقت آیا ہے کہ اس کی پالیسی کو ہم ناکام کہتے تھے, لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ پریکٹیکلی وہی پالیسی کامیاب ہوئی ہے. اور ایک وقت آیا کہ ہم اپنی پالیسی کو کامیاب دیکھتے تھے, ہم سمجھتے تھے کہ ہم نے افغانستان کو اوور پاور کر لیا اور افغانستان ہماری بی ٹیم بن گیا, لیکن اب پھر ہم نے دیکھا کہ افغانوں نے کیسے ریٹیلیشن دی اور پاکستان کے حوالے سے وہاں نفرت کی فضا کریٹ ہوئی. تو ہمیں اپنی پالیسی کے ڈرا بیکس نظر آ گئے ہیں, ہمیں اس خطے میں جن لوگوں نے جینون پالیسی اختیار کی ہے اس کی پروڈکٹیوٹی نظر آ گئی ہے. افغان کبھی بھی خطے میں فارن فورسز کو پسند نہیں کریں گے, بس ہم ان کا ساتھ دیں فارن فورسز کو نکالنے کے لیے, پولیٹیکل پروسیس کو سٹارٹ کرنے کے لیے, اور ہم افغانستان کے بارے میں یہ خواب دیکھنا چھوڑ دیں کہ ہم دوبارہ افغانستان میں उस तरह की गवर्नमेंट लेके आएंगे जैसे तालिबान दौर के अंदर हम लेके आएंगे। ये ख्वाब अगर देखना छोड़ दें तो अफगानिस्तान भी स्टेबल हो जाएगा, खित्ता भी स्टेबल होगा, और स्टेबल खित्ता ही इकोनॉमिक प्रोग्रेस को विटनेस कर सकता है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान मजबूर है, पाकिस्तान अभी तक प्रैक्टिकली ग्राउंड रियलिटी की बुनियाद पर आप कह रहे हैं ना मजबूर है, लेकिन अगर हम कहें कि यही वाहिद राय हल है तो ये दुरुस्त नहीं है। इसी खित्ते के अंदर हम देखते हैं, हम हमारे साथ अटैच एक कंट्री अमेरिका की पॉलिसीज के मुकाबले में खड़ा है, वो इंटरनली स्टेबल भी है, वो इकोनॉमिकली भी बेहतर कंडीशन में है, वो दुनिया के अंदर बेहतरीन रोल भी प्ले कर रहा है, और इस सब के बावजूद प्ले कर रहा है कि जब अमेरिका और उसके तमाम एलाइज उसके खिलाफ तमाम कुव्वतें इस्तेमाल कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? क्या अमेरिका हमारी मजबूरी है या हम भी अमेरिका की मजबूरी हैं? अगर आप गौर करेंगे तो पाकिस्तान अपनी जियो पोलिटिकल लोकेशन की वजह से ये उनकी मजबूरी है, अमेरिकन्स को इस खित्ते के अंदर कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान की ज़रूरत है। बस अगर हम ये कहें कि नहीं सिर्फ वो हमारी ज़रूरत नहीं है, दो तरफा मामला है, हम भी अपनी यानी उनको अगर इस खित्ते के अंदर कोई रोल चाहिए भी हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनको ये रोल आसानी से मिल जाएगा। अगर पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर एस्टेब्लिश होने के सफ़र का आगाज़ करे तो इस खित्ते के अंदर से फॉरेन फोर्सेस को निकाला भी जा सकता है, पाकिस्तान इंडिपेंडेंट अपने सफ़र का आगाज़ भी कर सकता है। पाकिस्तान कोई छोटा कंट्री नहीं है, पाकिस्तान कोई मामूली कंट्री नहीं है, पाकिस्तान वाहिद इस्लामी एटमी पावर है, पाकिस्तान लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है, पाकिस्तान दुनिया की आबादी और एनर्जी के संगम पर बैठा है, पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसके अफराद दुनिया के तकरीबन 150 कंट्रीज के अंदर हैं, ये पाकिस्तान की लेग्स हैं जो पूरी दुनिया के अंदर हैं। कमी दो चीज़ों में है, एक डिसीजन मेकिंग, और डिसीजन मेकिंग के साथ ही रिलेटेड है फिर उस डिसीजन के ऊपर कायम रहना, और दूसरा यह है कि इसके नतीजे में जो आने वाली मुश्किलात हैं वो इकोनॉमिक भी आएंगी, इब्तदाई तौर पर आएंगी, एक इब्तदाई तौर पर कुछ बहरान भी आएंगे, इब्तदाई तौर पर मुश्किलात भी आएंगी, लेकिन उसके बाद आप संभल जाएंगे। मसलन जो आग अमेरिका ने यहाँ जलाई है, पूरे हमारे पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी, एक्सट्रीमिज्म, खुद कुछ धमाके, अगर अमेरिकन का वजूद यहाँ ना होता पाकिस्तान कभी भी इस कैफियत से दोचार नहीं होता, और ये यकीनी है कि अगर इस खित्ते के अंदर से अमेरिकन के हाथ पांव काटे जाएंगे तो पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। अमेरिका के अहदाफ में मुय्यन है कि पाकिस्तान को स्टेबल नहीं होना चाहिए, बस हम एक 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 एनिमी हमारे लिए मुय्यन हो चुका है, हम क्यों उसको रोकने की कोशिश नहीं करते? तो असल चीज़ है कमिटमेंट, और अनफॉर्चुनेटली इस मौजू पे अमेरिकन ने बहुत काम किया हुआ है। पाकिस्तान में अगर आप मीडिया की बात करें तो मीडिया की कई बड़ी आउटलेट्स ये टोटली फाइनेंस बाई अमेरिकन है, ये बाज़ मीडिया के नाम भी आपको दिए जा सकते हैं कि जिनको प्योरली उन्होंने USAID ने अपने प्रोजेक्ट के तौर पे एंडोर्स किया हुआ है, और अक्सर मीडिया की आउटलेट्स के जो डेफिशिएंसीज हैं या जो उनके फाइनेंशियल मसलन डेफिसिट है उसको अमेरिकन्स पूरा करते हैं। इसके ज़रिए उन्होंने पाकिस्तान में एक गुलामाना माहौल बनाने में रोल प्ले किया हुआ है, लेकिन जेन्युइन लोग पाकिस्तान में अगर रोल प्ले करें तो इस सारे कैफियत को भी तोड़ा जा सकता है, और पाकिस्तान आज भी इस कैफियत में है, मैं पूरे तौर पे इस पे हूँ कि अगर फैसला हो जाए तो पाकिस्तान स्टेबल भी हो जाएगा, पाकिस्तान बड़ी पावर भी बन जाएगा, और पाकिस्तान अपनी मुश्किलात भी हल कर ले। मैक्सिमम गेन करने के लिए आपको पहले उस सतह पे आना है, मैक्सिमम गेन करने वाली सतह अभी बहुत बाद की बात है। ईरान की बात इसलिए डिफरेंट है कि ईरान एक नेशन के तौर पर, एक कौम के तौर पर खड़ा है, और अब जब वो अमेरिका बात करता है मुज़ाकरात की तो वो कहता है अच्छा आप अपनी इंटेंशन शो करें, आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं, क्या संजीदा हैं आप? संजीदा है तो ठीक है, पहले जो चीज़ें आपने ऐलानिया गसब की है वो वापस करें, फिर देखेंगे CBMs क्या हो सकते हैं, फिर देखेंगे कि क्या आप यूं, वो पूरी दुनिया को शो कर देते हैं कि ये तो मुखलस ही नहीं है मुज़ाकरात करने में, ये तो एक डिप्लोमेटिक एंड के ऊपर उनकी बहुत बेहतरीन टेक्निक है। पाकिस्तान की जब बात करते हैं तो दुरुस्त है, एक तरीका है इनकलाब का, और उसके लिए रोल प्ले करने वाला जैसे मैंने हकीकी लोगों का वो कहा वो तरीका है, ये एक है। पाकिस्तान में अगर एक पॉलिसी बनाई जाए तो ग्रेजुअली इनके नफूज को आप डिक्रीज कर सकते हैं, और चूंकि आकिल वो नहीं होता जो शर और खैर में तमीज़ करे, आकिल वो होता है कि जो कम बुराई और ज़्यादा बुराई में तमीज़ करते हुए निस्बतन कम बुराई का इंतखाब करे। तो आज का मरला शायद इसी से शुरू करने का हो, इसलिए कि इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, चूंकि अमेरिकन्स ने बड़ा सादा काम किया है और ये इंटरेस्टिंग है, पाकिस्तान में कहा यह जाता है कि अमेरिकन्स ने पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए बड़ा सादा मैकेनिज्म इख्तियार किया है। पीपल्स पार्टी 20 लोग हैं जो पीपल पार्टी के डिसीजन मेकर हैं, नून 15 लोग हैं जो नून के डिसीजन मेकर हैं, MQM का फलां फलां फलां, इनकी 4-5 से ज़्यादा लोग ये नहीं मिलेगी। आपके 10 से 15 जर्नल अगर उनके साथ अटैच हों फ़र्ज़ करें तो और उनके मफादात उनके साथ वाबस्ता हूँ, या उनकी अपनी फैमिलीज और उनके मफादात अमेरिका के साथ वाबस्ता हूँ फ़र्ज़ करें, तो इसका मतलब यह है कि ये टोटल 100 बंदा भी नहीं बनता पाकिस्तान में जिसके जिसको कंट्रोल करके वो पाकिस्तान के पूरे पोलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उन्होंने तो बड़ा सादा काम किया हुआ। अब जाहिर है या तो हमारे ये डिसीजन मेकर किसी प्रोसेस के नतीजे में, ख्वा वो इनकलाब का हो ख्वा वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो, उसके नतीजे में ये रिप्लेस हो जाए, निस्बतन जैनवन लोग आ जाएँ, और उसकी भी मिसालें बिलाखिर दुनिया के अंदर मौजूद हैं, ये एक बात है। दूसरा ये है कि ये अगर कम अज़ कम ये तय कर लें कि हमने आज से इंडिपेंडेंस का एक सफ़र का आगाज़ करना है, आएँ कोई नुक्ता आगाज़ बनाएं, आएँ कोई टाइम लाइन बनाएं, और उस टाइम लाइन के अंदर हमने कैसे अहदाफ को अचीव करना है, ये मैनेजेबल है। पाकिस्तान आज से एक अच्छा नुक्ता आगाज़ करार दे तो वो ग्रेजुअली पाकिस्तान के अंदर ला को फोकियत दिलवा सकता है, पाकिस्तान के अंदर अमेरिकन डिप्लोमेट्स की फालियतों को कम कर सकता है, अमेरिकन इंस्पायर्ड एनजीओज के रोल को कम कर सकता है, और इसी तरह इनके साथ हमांग, और इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर स्टेट का कंट्रोल जो है वो बढ़ता चला जाएगा। और स्टेट का कंट्रोल बढ़ना, इस वक्त स्टेट बिल्कुल स्टेटलेस है पाकिस्तान, इस वक्त स्टेट नज़र ही नहीं आती है पाकिस्तान के अंदर। तो इसके नतीजे में आप आहिस्ता आहिस्ता ये बात जो आप कर रहे हैं कि इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर आप उनको किसी जगह पर लाकर नॉक डाउन कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। क्या अफगानिस्तान के मामलात पाकिस्तान के बगैर चल सकते हैं? नहीं चल सकते। क्या आप समझते हैं मिडिल ईस्ट के मामलात पाकिस्तान के बगैर चल सकते हैं? नहीं चल सकते। ये हम समझते हैं कि सऊदी अरब के जरिए पाकिस्तान को कंट्रोल किया जा सकता है, ये एक अलग सवाल है कि सऊदी अरब कितना मजबूरी रहा है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान का अपना इन्फ्लुएंस जो है वो कितना है। पाकिस्तान एक बहुत इन्फ्लुएंशियल कंट्री है, पाकिस्तान अपनी सलाहियतों को समझे और अगर समझ कर एक प्लान तैयार करे तो बहुत थोड़े अरसे के अंदर पाकिस्तान, मसलन आप चंद मॉडल्स को सामने रखें, मलेशिया एक मॉडल है, उसने अमेरिका के साथ उस तरीके से जंग नहीं की, लेकिन मलेशिया को अमेरिका की आप स्टेट नहीं करार दे सकते, ये उस लेवल पर नहीं है, बल्कि वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर खड़ा है और उन्होंने अपने तमाम पहलुओं में अपने आप को डेवलप किया है और अपनी इस्लामी शनाख्त को भी नहीं छोड़ा। हम भी ये मैनेज कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त असल जो इस कुएं से कुत्ते का वजूद निकालना बड़ा ज़रूरी है, और वो है इस खित्ते से फॉरेन फोर्सेस का निकालना, और पाकिस्तान के अंदर भी फॉरेन फोर्सेस जिस तरीके से हैं उनको बहरहाल निकलना चाहिए, और जो इनके डिप्लोमेट्स हैं उनको महदूद होना चाहिए। ये नुक्ता आगाज़ है। कहते हैं किसी मुल्क में कोई बाइंडिंग फोर्स होनी चाहिए जो पूरी कम्यूनिटी को एक साथ खड़ा कर सके। मैं चैलेंज के साथ आपको कहता हूँ 5-10% को आप निकाल दें। पाकिस्तान में आज बाइंडिंग फोर्स अगर कोई एक नारा बन सकता है तो वो मुर्दाबाद अमेरिका का नारा है। पाकिस्तान की इस वक्त आप कई सियासी जमातों को भी देखते हैं, मजहबी जमातों को भी देखते हैं, जनरल पीपल कॉमन मैसेस इनको आप देख लें, इस वक्त वो अमेरिका के नफूज को रोकने या अमेरिका के खिलाफ सब मुत्तफिक हैं। देखिए आप इस मुजाहमत को खित्ते के बाद मॉडल से समझें। एक मॉडल है इराक का, एक मॉडल है अफगानिस्तान का। इराक के मॉडल के अंदर दो प्रोसेस हैं जो साइमल्टेनियसली साथ चलें, उसमें बाकायदा मुजाहमत भी है और उसमें पॉलिटिकल रेजिस्टेंस भी है। इन दोनों ने मिलकर रिजल्ट को अचीव करने में मदद की है, और नतीजा आपने देखा है कि बावजूद इसके कि अमेरिका को सबसे ज़्यादा जहाँ से उम्मीद थी वो इराक था, सबसे ज़्यादा उम्मीद जहाँ से थी, चूँकि वहाँ कुर्द भी हैं जिन्हें सेकुलर कहा जाता है, वहाँ पर अहले सुन्नत भी हैं जो मसलन ईरान का हवा बना के उनको भी वो मिला सकते हैं, लेकिन आप अमलन क्या देखते हैं वहाँ? न फकत ये कि मिलिटरली अमेरिकन्स को वहाँ से निकलने पे मजबूर होना पड़ा, बल्कि वहाँ पॉलिटिकल सिस्टम भी इतना स्ट्रेंथन हो गया कि उसने फौरन टेक ओवर किया है मामलात को। तो ये करते क्या हैं, ये किसी एक जगह पर वीकनेस ज़रूर रखते हैं, यानी ये अगर मिलिटरली देखेंगे कि हम शिकस्त खा रहे हैं तो ये पॉलिटिकल सिस्टम को बिल्कुल स्ट्रेंथन नहीं होने देते। तो इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर ये किया है कि अफगानिस्तान में पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो स्ट्रेंथन ना हो। अफगानिस्तान की अगर आप मूवमेंट की बात करें तो अफगानिस्तान और इराक की मूवमेंट में आपको एक डिफरेंस नज़र आएगा। इराक के अंदर सेक्टेरियनिज्म है, वो तबकात के जो अमेरिका के साथ लड़ रहे हैं वो शिया भी हैं और सुन्नी भी हैं, हर दो हैं, लेकिन आप देखते हैं कि इंतहा पसंदों की तरफ से अरब कंट्रीज़ की इंस्पायरेशन और अमेरिकन की इंस्पायरेशन की बुनियाद पर शियों के ऊपर हमले किए गए, सुसाइडल अटैक्स हुए, दहशतगर्दी हुई, बम ब्लास्ट होते रहे। क्यों भला? ताकि ये साबित किया जाए कि खित्ते के अमन को कंट्रोल करना ये मकामी लोगों के लिए मुमकिन नहीं है, लिहाजा फॉरेन फोर्सेस खित्ते की ज़रूरत है और उन्हें यहाँ पर रहना चाहिए। यानी सर्व किया मिलिटेंट्स ने, सर्व किया अमेरिकन मफादात को, बस आपका पॉलिटिकल स्ट्रेंथन जो है वो हुए और आपने फिर अमेरिकन को वहाँ से निकाला, और बिलाखिर पूरी कोशिश के बावजूद जो सोफा है यानी स्टेटस ऑफ फोर्सेस एग्रीमेंट वो ख़त्म हुआ, और उसके मुताबिक 2011 का जो आखिरी दिसंबर था वो आखिरी दिन साबित हुआ और तमाम अमेरिकन को यहाँ से निकलना पड़ा, और वो उनकी तेल की दौलत और दीगर चीज़ों का भी इस्तेमाल नहीं कर सका, जारी नहीं रख सका। कम अज़ कम अफगानिस्तान में आप देखते हैं कि अफगानिस्तान में जो मुजाहमत है उसकी खूबसूरती है, सिवाय इक्का दुक्का वाक्यात के, और ये वाक्यात भी डाइवर्ट करने की कोशिशों का हिस्सा थे। आपने नहीं देखा होगा कि पूरे अफगानिस्तान में शियों को अटैक किया गया हो, सिविलियंस को अटैक किया गया हो, आम शहरियों के ऊपर हमले किए गए, नहीं। टारगेट ओरिएंटेड है अमेरिकन्स, अलाइड फोर्सेस और उनके साथ वर्क करने वाले फौजी। ये बहुत यूनिकनेस है और ये सही रेजिस्टेंस की इलामत है कि वो रेजिस्टेंस वो होती है जो टारगेट ओरिएंटेड हो और वो असूलों और प्रिंसिपल्स के ऊपर भी अमल पैरा हो। तो हम देखते हैं कि वहाँ उन्होंने कोई ऐसी सोशल सिस्टम के अंदर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की। पाकिस्तान में अमेरिकन ने इन दोनों तजर्बात से इस्तेफादा करते हुए क्या किया है कि पाकिस्तान में स्टेट के खिलाफ फैक्शंस गर्म हो गए, आम सिविलियंस और आम लोगों के खिलाफ खुदकुश बम धमाके और ये वो हुआ, यानी उन्होंने स्टेट को भी कमज़ोर कर दिया और सोसाइटी को भी कमज़ोर कर दिया। तो नंबर एक, हम पूरी दुनिया में चलने वाली मुजाहमती तहरीकों की जो खित्ते से फॉरेन फोर्सेस को निकालने में मसरूफ़ अमल उनका साथ देते हैं और जो जेन्युइन फोर्सेस हैं वो अफगानिस्तान के अंदर हैं या इराक के अंदर हैं, हम उसकी हिमायत करते हैं और इंशाअल्लाह उसके नतीजे में इस वक्त इराक के अंदर उनकी सर्वाइवल नहीं है, इराक से उनको निकलना है। और ये जो आखिरी वो पैच करने और मामला करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि वो निकलें लेकिन एक मरतबा फिर तालिबान को इस खित्ते पर मुसल्लत करके जाएं, जिसकी वाज़ह मिसाल आपको यूएई में कतर में उनके दफ्तर का आगाज़, अमेरिकन के साथ उनके डायरेक्ट मुज़ाकरात और उसके नतीजे में अमेरिकन जेलों से तालिबान कैदियों की रिहाई का मामला है, ताकि वो चाहते हैं कि वही जो उनकी बी टीम है उसको दोबारा वहाँ पर मुसल्लत करके जाएं, पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो स्ट्रेंथन ना हो। मैं अगर कंक्लूड करूँ, पाकिस्तान के अंदर से अभी अफगानिस्तान वाली कैफियत भी नहीं है और इराक वाली कैफियत भी नहीं है। पाकिस्तान कुछ मुज़ाहमत और मेनली पॉलिटिकल सिस्टम की स्ट्रेंथनिंग के ज़रिए, जेन्युइननेस के ज़रिए पाकिस्तान से अंदर से अमेरिकन इनकला और अमेरिकन नफूज को कम किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। ये एक मिथ है कि तालिबान वहाँ पर फाल है, बल्कि हकीकत यह है कि तालिबान एक फिनामिने के तौर पर बहुत ज़्यादा इसको मीडिया और उसकी वजह से कवरेज मिली और वहाँ किसी भी तरह की जो मूवमेंट है वो उनके खाते में डाल दी जाती है, ताकि तालिबान के साथ जब आप मुज़ाकरात कर रहे हैं तो उनको वेटेज मिल रहा हो। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। वहाँ तमाम अफगानी जो, चूँकि अफगानी मिजाज है एक, वो तालिबान का मसला नहीं है, आपको यानी इस पर आप बात करेंगे तो हम देखेंगे कि तालिबान को अफगानियों ने कबूल नहीं किया हुआ, ये अफगानी मिजाज के खिलाफ है। तो वहाँ पर जो जेन्युइन पावर्स हैं वो ये तालिबान नहीं है, वो खुद लोकल अफगानी हैं, वो अलकायदा एलिमेंट भी नहीं है, वो अफगानिस्तान के बासी हैं, उनमें बिलखसूस अगर आप बात करें गुलबदीन हिकमतयार, इस वक्त उसकी बहुत एक्टिव रोल है। इसी तरीके से कई फैक्शंस हैं जिनका वहाँ पर नाम लिया जा सकता है कि जो अमेरिकन के खिलाफ मसरूफ अमल है, वो तालिबान नहीं है। लेकिन चूंकि मीडिया में इस तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है कि एक छोटी सी कार्रवाई भी अगर हो तो वो तालिबान के खाते में गिनी जाती है, वो तालिबान के खाते में होने वाली कार्रवाई है नहीं, बल्कि अमेरिका तालिबान के उस ग्रोह को मुसल्लत करके जाना चाहता है जो पाकिस्तान के अंदर भी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है और अमेरिकन इंटरेस्ट को सर्व करता है, और उसी के ज़रिए वो समझते हैं कि वो अफगानिस्तान के अंदर भी अमेरिकन इंटरेस्ट को सेफगार्ड कर सकेंगे। अगर हम कहें जमात इस्लामी का, अगर आप उससे भी पिछली हिस्ट्री में जाएँ, 70 से जब से जिहाद शुरू हुआ है, क्या यह दुरुस्त नहीं है कि गुलबदीन हिकमतयार पाकिस्तान में जमात इस्लामी का सबसे बड़ा पुश्तपना था, इनके अलबद्र के नाम से कैंप से लेकर सब बड़े कैंप्स जो थे ट्रेनिंग के वो वहीं पर थे। तो ये हम कहना बिल्कुल गलत होगा कि वो एक तबलीगी उस सेटअप के तो कायल है लेकिन वो अस्करी जहाद के कायल ही नहीं, उसने किया है। अच्छा, दूसरा ये है कि एक पीरियड रहा है दरमियान में जिसमें उसके लिए पोजीशन और माहौल जो है वो साजगार नहीं था, अल्टीमेटली उसे अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा और ये तालिबान का पीरियड है जिसमें उसे ये छोड़ना पड़ा। वो तालिबान वाला इस्लाम और वो जहाद वो एक अलग चीज़ थी जो इससे कंपेटेबल नहीं थी, इसे ये छोड़ना पड़ा, मजबूरन छोड़ना पड़ा। उसके बाद वो दोबारा गया है और अब एक अरसा हो गया है और इस वक्त उसके जो ज़ेर असर इलाके हैं वो बहुत ज़्यादा इलाके हैं, ऐसा नहीं है कि आप कहें कि उसने और उसके साथ मरबूत करो बाकायदा तौर पे अस्करी कार्रवाइयों में मुलव्वस है तो ऑन रिकॉर्ड नहीं। हमने चूँकि ये देखा है कि फिर हिस्ट्री की बात है, हम वियतनाम के अंदर देखते हैं वियतनामी लड़ते हैं, स्टेट स्पोर्ट नहीं है लेकिन वो लड़ते हैं, एक नेशन लड़ती है। हम देखते हैं लबनान के अंदर हिजबुल्ला स्टेट नहीं है लेकिन हिजबुल्ला लड़ती है इसराइल के खिलाफ, ये दरअसल तो अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ी उसने। पूरी दुनिया में अगर मजलूमीन कहीं भी खड़े हो जाएं तो पूरी दुनिया के मजलूमीन उन्हें सपोर्ट करने के लिए तैयार होंगे और ये जंग लड़ी जा सकती है। देखें कुछ नुकात तो वजाहत हो चुके हैं, मसलन मशरक़ वस्ती के जो लीडिंग कंट्रीज़ हैं उनमें से एक जमहूरी इस्लामी ईरान है और ईरान का बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगता है, यहाँ से ईरान को प्रेशराइज़ करने की, ईरान को मुख्तलिफ चीज़ों में उलझाने की कोशिश की गई है। अब्दुल मालिक रेगी वाला मामला एक मामला है, तमाम अरब कंट्रीज उसमें इन्वॉल्व थे, अमेरिकन उसमें इन्वॉल्व थे। इसी तरीके से अमेरिकन जो स्टेट डिपार्टमेंट जनरल है उसने पाकिस्तान के तकसीम का एक नक्शा जारी किया हुआ है, खुदा न खास्ता उसमें आज़ाद बलूचिस्तान का नक्शा है। आज़ाद बलूचिस्तान के नक्शे के ज़रिए वो क्या करना चाहते हैं, वो अमेरिका ईरान पाकिस्तान के दरमियान एक मुस्तकिल जोन क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ कन्फ्रंटेशन होगी और जो दोनों कंट्रीज़ के ऊपर एक प्रेशर जो है वो डेवलप कर रहा होगा। और ज़ाहिर है इसको कहाँ से सपोर्ट मिलेगी, एक ऐसा बलूचिस्तान कि जिसके एक तरफ पाकिस्तान है जो उसका खुदा ना करे एक मफरूज़े के तौर पे वो एनमी होगा, दूसरी तरफ ईरान उसका एनमी होगा, चूंकि आज़ाद बलूचिस्तान में ईरान और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बाज़ इलाके भी शामिल हैं, तो खित्ते में उसका कोई सपोर्टर नहीं होगा, मगर ये कि बाहर से कोई आए और उसको सपोर्ट करे और वो उसको अड्डे प्रोवाइड करें, वो अमेरिका हो सकता है और उसके अलाइज हो सकते हैं। तो इस लिहाज से भी आप देखें कि ये पूरे मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स के ऊपर जो है वो असरअंदाज होता है। फिर ये आप देखें कि मिडल ईस्ट की तवानाई के सोर्सेज के लिए पाकिस्तान, मसलन चाइना को ऑयल सप्लाई, चाइना को गैस की सप्लाई के लिए पाकिस्तान एक बेहतरीन रूट है, इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। फिर पाकिस्तान के इत्तफाक से एक ऐसा कंट्री है कि जिसके अरब कंट्रीज़ के साथ भी अलायंसेज हैं, जिसके तुर्की के साथ भी अलायंस है और जिसके ईरान के साथ भी अलायंस है, जो तीन मेजर स्टेक होल्डर हैं मिडल ईस्ट के अंदर। तो जाहिर है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर कोई तब्दीली, पाकिस्तान के अंदर कुछ डेवलपमेंट्स का होना, ये इस पूरे खित्ते की पॉलिटिक्स के ऊपर असरअंदाज होता है। फिर आप देखते हैं आइडियोलॉजिकली पाकिस्तान फ़लस्तीनियों का हामी रहा है। पाकिस्तान ने किसी भी वक्त अपनी क़यामे पाकिस्तान से लेकर अब तक फ़लस्तीनियों की काज की हिमायत को छोड़ा नहीं है। पाकिस्तान में अब ये एफर्ट्स हो रही हैं इसको सेकुलरिज्म, तुर्की के मॉडल के पीछे लगाना और इसको ये कहना कि तुम अपने मसले नबेड़ो, आपको दुनिया के मसलों की क्या पड़ी है, इन चीज़ों की तरफ लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन स्टिल पाकिस्तान के अंदर दीगर मुसलमान ममालक और मुसलमान इशू के हवाले से जो दर्द है वो बहुत गहरा है। पाकिस्तान में तहरीकी खिलाफत चली, पाकिस्तान में फ़लस्तीन के हवाले से एक मूवमेंट मौजूद है। तो पाकिस्तान के अंदर कोई भी तब्दीली इस पूरे खित्ते के ऊपर इम्पैक्ट डालेगी, इसलिए वो पाकिस्तान के जरिए कई खराबियों का सबब बन रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर कई खराबियों को रवाज देकर इस पूरे खित्ते को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अगर एक और बात कहूँ जो थोड़ी डिफरेंट है, हत्ता अरब कंट्रीज ये ख्वाहिश रखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये टेररिज्म जारी रहे। क्यों बोला? ये उनके वो लोग जो उनके एक्सट्रीमिस्ट हैं जो वहां से फ्लो करके इस खित्ते के अंदर आए हैं और एट वॉर हैं, अगर यहां से उनका चैप्टर क्लोज होता तो वो कहाँ जाएंगे? वापस अपने कंट्रीज पे। वो अपना काम भी नहीं छोड़ सकते। तो अल्टीमेटली उनकी ये ख्वाहिश है कि ये आग उनके अपने मुल्क में ना आए, ये आग उनसे दूर रहे। और आप जानते हैं कि उसामा के इशू में बिलाखिर सऊदी अरब और उसामा के दरमियान एक सख्त किस्म की कन्फ्रंटेशन वजूद में आ चुकी थी, और बाज़ थ्योरीज के मुताबिक तो अफगान इसके मर्डर के अंदर सऊदी अरब का अपना एक हाथ है, चूंकि सऊदी अरब भी इंटरनली बाज़ ऐसी चीज़ों को जो है वो कर रहा था। तो इससे भी आप अंदाज़ा करें कि कैसे अरब कंट्रीज़ पाकिस्तान की डिस्टेबलाइजेशन में मुलव्वस हैं। पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान के मामलात हैं, ये तमाम के तमाम मामलात ऑन रिकॉर्ड है कि अरब शहजादे यहाँ पर आए शिकार के नाम पर, उन्होंने यहाँ बलोच लीडरों के साथ इंट्रैक्शन डेवलप किया, यहाँ से जब वो वापस गए तो उन्होंने इन लीडर्स को वहां पर दावत दी और उसके बाद उनके दुनिया की इंटेलिजेंस इदारों के साथ ताल्लुकात इस्तवार हुए, और फिर आपने देखा कि इस पूरे खित्ते के अंदर एक आग लगी। और आज भी आप देखते हैं बलोच लीडरशिप कहां पर है, जो आज़ाद बलोचिस्तान की बात करते हैं वो इन्हीं गल्फ कंट्रीज के अंदर है। तो ये डायरेक्टली पाकिस्तान के अंदर इन्वॉल्व हैं पाकिस्तान की अहमियत की वजह से, और पाकिस्तान में किसी तरह की डेवलपमेंट इस पूरे खित्ते के ऊपर असरअंदाज हो गए। फलस्तीन का जिक्र किया मैंने, इन तमाम इलाकों की जो एनर्जी है, एनर्जी रिसोर्सेज के हवाले से मैंने जिक्र किया, ये है। प्लस कुछ जियोपॉलिटिकल इश्यूज भी हैं, जैसे मसलन गवादर पोर्ट का मसला है। गवादर पोर्ट बहुत सेवरली हिट करता है दुबई से लेकर अमान तक इनके तमाम एरियाज को, अगर गवादर पोर्ट एक्टिव हो जाए, इसलिए उसको एक्टिव नहीं होने दिया जा रहा। और ट्रेड रूट्स के हवाले से मसला है, चाइना के लिए ये एक शॉर्टेस्ट तरीन ट्रेड रूट है, इसलिए इस खित्ते को नामन बनाया जा रहा है, इसलिए इस खित्ते के अंदर सरमाया गुजारी की जा रही है। और आप ये देखते हैं कि ये मुख्तलिफ कौंसलें पाकिस्तान के अंदर, मुख्तलिफ इदारे, मदरसे, ये ऐलानिया तौर पर अरब फंडिंग के साथ जो है वो काम कर रहे हैं। तो ये एक रियलिटी है, पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस है जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। उन्हें पता है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी पॉलिटिकल डिबेकल जो है वो पूरे खत्ते के ऊपर असरअंदाज हो। एक तो ये कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, आपने जब बंद करने की बात की नेटो सप्लाई, तो पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर गया, इतना पानी गुजर गया कि आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करा बैठे, अफगानिस्तान को हर तरह की चीज़ें मिल गई अफगानिस्तान में अमरीकी फौजों को, और उन्होंने अपना एक अशरा जो है वो अपनी मुजामत का वो वहाँ पे गुजार लिया। और आप देखते हैं कि बहुत कुछ जो उन्हें अचीव करना था वो उन्होंने उस पीरियड के अंदर किया कि आप सोए रहे, आपने कोई डिमांड नहीं की, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। अलबत्ता अमेरिका की मजबूरी ये है कि ये शॉर्टेस्ट रूट है और ये बेहतरीन रूट है अफगानिस्तान को नेटो सप्लाई के हवाले से। बाई एयर सप्लाई तो दुनिया में मुमकिन ही नहीं होती, और लैंड रूट के ज़रिए जो सप्लाई है, चूँकि हैवी इक्विपमेंट बाई एयर आ नहीं सकता, लैंड रूट के लिए जो सप्लाई है वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स के ज़रिए से है। सेंट्रल एशियन स्टेट्स में इस वक्त मामला ख़राब हैं, बिलखसूस रशिया की अवेकनिंग और रशिया की पोलिटिकल स्टेबिलिटी, और फिर रशिया ने दोबारा अपने मसल्स को फ्लेक्स किया है, तो उसके बाद इस खत्े के अंदर अमेरिका की डोमिनेंस में काफ़ी कमी आई है। तो उनके लिए वहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस हैं, और बाज़ चीज़ों को तो मसलन सिवाय गज़ा और ख़ुराक के वो बाज़ चीज़ों की वहाँ से मोबिलिटी की इजाज़त ही नहीं दे रहे, तो इसलिए उनके पास कोई और चारा नहीं है। अलबत्ता इनकी अमूमन ये क्वालिटी रही है कि इन्होंने लंबे अरसे तक के रिजर्वायर्स रखे होते हैं, और ये वही वजह है कि जिसकी वजह से वो इतना सर्वाइव कर रहे हैं, वरना सर्वाइवल भी उनके लिए मुमकिन नहीं था। तो ये अमेरिकन्स की एक मजबूरी थी, है। पहले भी एक प्रोग्राम में हमने ये कहा था कि पाकिस्तान इस को रेजिस्ट नहीं कर सकेगा, और अल्टीमेटली ऐसा ही हुआ, और बगैर किसी बड़ी अचीवमेंट के। हत्ता आपने एक छोटी सी अचीवमेंट कही थी कि अमेरिका माफ़ी मांगे सलाला चेक पोस्ट पर हमले की, उसकी भी अभी तक कोई गारंटी नहीं है, और ये तकरीबन जाहिर हो चुका है कि पाकिस्तान जो है वो सप्लाई खोलने जा रहा है। तो ये बड़ा एक शेमफुल एक्ट है, और ये यूं ही है कि अफगानिस्तान में मुसलमान भाइयों को मरने के लिए आप एक रूट दे रहे हैं कि इधर से आप जाएं और उनको मारें और यहाँ से निकलें भी सही, ये किसी तौर इसकी जो है वो हिमायत नहीं की जाए। पाकिस्तान और अमेरिका अगर बराबरी की बुनियाद पर बैठ जाते हैं तो क्या हर्ज है। मैं जस्ट ये कहूँगा कि नेटो सप्लाई के बहाल होने से पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बराबरी की तरफ बात नहीं जाती, बल्कि गुलामी के ऊपर मोहर तस्दीक साबित होती है। ये मजीद गुलामी की तरफ जाने वाला एक कदम है। इसे आप कहीं भी पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशंस में नॉर्मेलिटी नहीं करार दे सकते। हर आने वाले दिन उनकी एक नई डिमांड होगी। ये एक ऐसी गली है जिसमें कोई एंड नहीं है। इसमें जब वो आपको डालेंगे तो फिर आपको पीछे 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 ही हटना पड़ेगा। फिर हर रोज उनकी एक नई डिमांड होगी। अगली डिमांड उनकी होगी पाकिस्तान में हमें माहाना इतने हजार फौजियों के लिए वीजे दिए जाएं, या मसल इदारों के लिए वीजे दिए जाएं। उससे अगली डिमांड होगी पाकिस्तान में स्टेट इस तरीके से एक्ट करे। उससे अगली डिमांड होगी इस तरीके से बजट पेश किया जाए। आप अपने तमाम मामलों में अपना इख्तियार जो है ना वो खो देंगे। कोई ब्रेक लगाएं, कहीं रेड लाइन बनाएं, आप कहें इससे पीछे हम नहीं आ सकते, ताकि कम अज कम एक शुरुआत कर सकें। मैं ये समझता हूँ कि जब आपको वो जिल्लत की आखिरी हदों पे ले जाना चाह रहे हैं तो आपको किसी जगह पर जाकर रुक जाना चाहिए। इसलिए कि अगर कुछ नाफहम लोग ये बातें नहीं समझ पा रहे थे तो आज वो सारी हुज्जतें तमाम हो गई हैं। आज नाफहमी का कोई मसला नहीं है, आज हर चीज़ आपके लिए क्लियर है। इस लिहाज से आपके ऊपर हुज्जत तमाम है कि इस वक्त जो है वो स्टैंड ले लिया जाए। पाकिस्तान टूट गया, आपको समझ नहीं आई, आपके एनर्जी का क्राइसिस है, अमेरिका मजबूर कर रहा है कि आप ईरान के साथ गैस पाइपलाइन ना बनाएं, आपको समझ नहीं आ रही, चाइना आपसे रूठ गया, आपको समझ नहीं आई, इन तमाम मामलों में कौन है? तो किसी जगह उसको महदूद करें ना, किसी जगह उसको ब्रेक लगाएं, किसी जगह पाकिस्तान की अपनी कौम को उसको कोई शनाख्त दें, किसी जगह पाकिस्तान की अपनी कौम को कोई सॉलिडेरिटी अता करें, उसके बाद आप एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो उस गली में तो ना जाए जिस गली में वो आपको ले जाना चाह रहे हैं। ये बात कहते हुए कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके अंदर बड़ी बुनियादी चेंजिंग्स की ज़रूरत है, और ये सिस्टम भी उसी में जैसे न्यू कॉलोनियलिज्म कहा है उसी को सर्व करता है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में 10% 15% वोट लेने वाली पार्टी पाकिस्तान के स्याह सफ़ेद की मालिक बनती है। इसको चेंज किया जा सकता है और इसे चेंज करने की ज़रूरत है। इसीलिए विल ऑफ़ द पीपल जो है वो गवर्नमेंट के लेवल पर मुंतकिल नहीं हो सकती। करंट पोलिटिकल सिस्टम में तो हमें कोई बड़ी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि जब तक पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी, विल ऑफ़ द पीपल मुंतकिल हो ही नहीं सकती। करंट पॉलिटिकल सिस्टम में कोई बड़ी तब्दीली आने का इम्कान नहीं है। फिर लेकिन फिर वही बात, अगर आप कहें कि आपने दो बुराइयों में से कम बुराई का इंतखाब करना है तो आपको ऐसे फैक्शंस, ऐसी शख्सियात और ऐसे ग्रोहों का इंतखाब करना पड़ेगा जो कम अज़ कम बाहमियत हों, बागैरत हों। एक बागैरत इंसान के लिए मुश्किल होता है। मसलन मुझे पता है कि पाकिस्तान के आपके एक साबिक वज़ीर, बल्कि हाँ साबिक वज़ीर रहे, वो जब यूके के विजिट पर जाते हैं, और उनमें से कुछ लोग जो अमेरिका के विजिट पर जाते हैं, तो उनको बरहना करके उनकी तलाशी ली जाती है, बरहना किया जाता है। वो उसको एक्सेप्ट करते हैं और वो उस पर कोई अपॉलोजी जो है वो नहीं करते, और वो उस प्रोसेस से गुजर जाते हैं। एक बेहमियत आदमी है वो, आपका MNA मुंतखब, वो आपके पोलिटिकल प्रोसेस को लीड कर रहा है, क्या करेगा? लेकिन फिर हम देखते हैं कि मसलन फाटा के बाज़ लोगों में वो जब गए हैं तो उन्होंने जब उनको तलाशी, या कुत्तों के साथ तलाशी लेने का हुआ है तो उन्होंने उनको इनकार किया है। और अल्टीमेटली उन्होंने विजिट उनके एयरपोर्ट से कैंसिल किया है, वहीं से वो वापस आए। ये एक छोटा सा फर्क है ना, लेकिन पहले मरले में आप ऐसे लोगों को जो मुख्तलिफ खित्ते में हैं, बाहमियत हैं, उनके इंतखाब में तो कोई रोल प्ले कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज में से भी निस्बतन ऐसे लोग के जो पाकिस्तान के मामलात को समझते हैं और पाकिस्तान को इस मुश्किल बहरान से निकालना चाहते हैं और अमेरिका के हवाले से आपके जज्बात से हम आंग हैं, तो कम अज़ कम ये है कि उनको आगे लाने में मदद की जाए। ये मिनिमम है जो इस वक्त हो सकता है। देखिए, एक बड़ी सतह की साइकोलॉजिकल वारफेयर खित्ते में चल रही है। इनकलाब इस्लामी ईरान की डोमिनेंस खित्ते के अंदर और उसका नफूज बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, बिलखसूस इन अपराइजिंग्स के बाद जो मिडल ईस्ट के अंदर हुई। पहले से जिन मामलात पर मगरब ने और उनके जो अलाई अरब कंट्रीज़ हैं उन्होंने काम किया है, उसमें यह है कि मसलन ईरान के इस्लामी इनकलाब को शिया इनकलाब का नाम दिया जाए, ये एक एफर्ट उन्होंने की है। इसी तरीके से ईरान के चूंकि लोग अजबी कहे जाते हैं, तो वो अरब और अजम का वही तनाज़ा जो पैम्बर के ज़माने में था, उसी तरह के तनाज़े को मसलन दोबारा लाना चाह रहे हैं, शुरू करना चाह रहे हैं, ताकि ईरान को कर्टेल किया जा सके। अब ये एक रियलिटी है कि ईरान का जो इन्फ्लुएंस बढ़ा है अरब कंट्रीज़ के अंदर, वो इसलिए नहीं बढ़ा कि ईरान एक कंट्री के तौर पे मजबूत है, बल्कि इसलिए बढ़ा है कि ईरान ने चंद असूलों की बुनियाद पर स्टैंड लिया है। वो असूल ऐसे हैं कि जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, वो असूल ऐसे हैं कि जो आपको इज्जत और सरबुलंदी देते हैं। इनकलाब इस्लामी एक मॉडल बना है जिसकी वजह से इस खित्ते के अंदर ये तब्दीलियाँ आई हैं। तो खौफजदा हैं ये अरब कंट्रीज़ जो ईरान के रूबरू यानी फिजिकली हैं, ये खौफजदा हैं ऐसी किसी तब्दीली से, ये खौफजदा हैं उन असूलों से जिनकी बुनियाद पर ईरान ने स्टैंड लिया है और जिनकी बुनियाद पर अरबों के अंदर तब्दीली आई है। बस ये उसको डाइवर्ट करना चाहते हैं। बहरीन के अंदर जो अपराइजिंग है, ये फकत इन अरब कंट्रीज के लिए खतरे का सबब नहीं है, बल्कि अमेरिका के फिफ्थ फ्लीट के लिए खतरे का सबब है। अमेरिका के दो बड़े अड्डे, जिनमें से एक अड्डा कुवैत में है और एक अड्डा जो है वो बहरीन में है, ये दुनिया में अमेरिका के बड़े अड्डों में शुमार किए जाते हैं। और इस पूरी गल्फ को जो कंट्रोल करता है वो यही एरिया है, और बिलखसूस जो फिफ्थ फ्लीट है अमेरिका का, वो ये कंट्रोल करता है। तो ये सारी चीज़ें एट स्टेक हैं। वो उस अपराइजिंग को भी रोकना चाहते हैं और वो ईरान के इनकलाब के असरात को भी रोकना चाहते हैं, लिहाजा वो उसको कभी फारसीज़म के नाम पर, अजमी होने के नाम पर, कभी शिया होने के नाम पर वो उसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी आप देखते हैं कि जैसे गूगल एक बड़ा इदारा है, लेकिन उसके पीछे भी जाहिर है अमेरिकन और उनकी वो हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने प्रोवोक करने के लिए इस खित्ते से उसकी शनाख्त छीनने के लिए जो पर्शियन गल्फ है उसको उन्होंने उसका नाम जो है वो रिमूव किया है अपने इंटरनेशनल मैप्स के ऊपर से, जिस पे एक रिफ्ट जो है वो क्रिएट हुई है। तो असल मसला क्या है, असल मसला ये है कि खौफजदा वो ईरान के असूलों से हैं, खौफजदा वो अपने अवाम से हैं, और खौफजदा वो इस डेमोक्रेटिक अवेयरनेस से हैं कि जो इस वक्त खित्ते के अंदर आ रही है, लेकिन उसको डाइवर्ट करते हुए वो नाम देना चाहते हैं ईरानी नफूज का, ईरानी इन्फ्लुएंस का, ईरान का खित्ते के ऊपर तसल्लत की ख्वाहिश का, इस तरह के नामों से, और यूं वो लोगों को मिसगाइड करके अपनी गिरफ्त जो है वो मजबूत करना चाहते हैं। ये दरअसल यहाँ पर मुसल्लत हुक्मरान जो एक मुद्दतों से मुसल्लत हैं इस खित्ते पर, उनको अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने की एक प्लानिंग है, जिसमें अभी उन्होंने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल तो उन्हीं को सर्व करती है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने कभी फलस्तीन के हवाले से स्टैंड नहीं लिया, कभी इसराइल के हवाले से स्टैंड नहीं लिया, कभी अमेरिकन इन्फ्लुएंस के हवाले से स्टेट नहीं लिया, बल्कि इनमें से बास कंट्रीज हैं जिन्होंने लीगली अपना मुल्क का डिफेंस अमेरिका के सुपुर्द किया हुआ है, वो उस हवाले से कभी स्टैंड नहीं लिया और ले नहीं सकते। लेकिन अमेरिकन इंटरेस्ट की बुनियाद पर शाही और हुक्मरानी को बचाने के लिए वो एक ऐसा अलायंस तश्कील देना चाहते हैं कि जो इस खित्ते में नई प्रॉब्लम्स को खड़ा कर सके, और इसीलिए उन्होंने जो जीसीसी रिलेटेड कंट्रीज़ हैं उनकी यूनियन की तजवीज़ दी है, जिस पे अभी अलबत्ता पहले मरहले में इत्तेफाक नहीं हो सका। और दूसरा यह है कि बहरीन के इंजमाम की बात की गई है सऊदी अरब में, सऊदी अरब के एक सूबे के तौर पर। अब ये चूंकि हिस्टोरिकली एक प्रॉब्लम है, क्योंकि बहरीन जो है वो 1870s में तकरीबन हाँ अंग्रेजों के दौर में एक रेफरेंडम के जरिए, रेफरेंडम में दो नुकते थे, क्या बहरीन एक आज़ाद कंट्री रहना चाहता है या बहरीन ईरान के साथ रहना चाहता है, चूंकि बहरीन प्रीवियसली ईरान का हिस्सा था, तो इसके ऊपर जो है वो रेफरेंडम हुआ और उस वक्त उन्होंने इंडिपेंडेंस को वोट दिया था। और ये जो कहा जा रहा है कि अगर आज बहरीन जो है उसको कहीं किसी के साथ एसोसिएट होना चाहिए तो फिर वो अपनी हिस्ट्री के साथ एसोसिएट होगा, फिर उसे ईरान के साथ एसोसिएट होना चाहिए, फिर उसे सऊदी अरब का सूबा क्यों बनना चाहिए, क्योंकि ये खालसन पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। अलबत्त हम बहरीन की इंडिपेंडेंस के हामी हैं, हम किसी तौर बहरीन को किसी भी जगह का हिस्सा बनाने की बात नहीं करते। हम कहते हैं बहरीन की सॉलिडेरिटी, बहरीन की खुद मुख्तारी और बहरीन के अवाम जो है उसको सपोर्ट किया जाए और उनकी जो है बात उसको सुना जाए। और ये जो दोगली पॉलिसियां कि पूरी दुनिया में आप डेमोक्रेसी की हिमायत करें और इस खत्ते के अंदर आप अमरीतों की हिमायत करें, इसको तर्क होना चाहिए। तो खुलासा यही है कि ये उनके अपने मफादात को और अमेरिकन मफादात को सर्व करने के लिए ये किया जा रहा है। बहरीन की अपराइजिंग चूंकि ऐसे मरले पर पहुंच गई है कि वो शायद अगर मजीद बढ़ी तो वो हुक्मरानों को ले डूबेगी और अमेरिका के मफादात, जैसे मैंने फिफ्थ फ्लीट का जिक्र किया, वो नहीं बाकी रह सकेंगे। अल्टीमेटली वो उसको काउंटर करने के लिए ऐसी तजवीज़ें पेश कर रहे हैं जो मुझे ये यकीन है खित्ते में एक नई आग लगाने का सबब बनेंगे। बहरीनी खामोश नहीं रहेंगे, सऊदी अरब के लोग खामोश नहीं रहेंगे और यमन के अंदर अपराइजिंग बहरहाल है और इन दीगर कंट्रीज़ के अंदर ये जो कमांड एंड कंट्रोल है ये फिर ज़्यादा अरसा बरकरार नहीं रह सकेगा, क्योंकि लोग बिलाखर आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी की तरफ सफ़र चाहते हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि जो OIC है उसको क्यों फेल किया गया? वो यूनियन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ ही है एक सेंस में। पहले पहले चूँकि जो यूनियंस बनती है ना, यूनियंस बनने के लिए CBMs की ज़रूरत होती है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की ज़रूरत होती है। ये पहला एक आपको फोरम प्रोवाइड किया जिसपे आप सारे मुस्लिम कंट्रीज बैठ गए, हर एक ने अपनी पॉलिटिक्स की। असल तो ये है कि आप एक अलायंस बनाएं जो कहे कि हम इस खित्ते के अंदर से फॉरेन फोर्सेस को निकालेंगे। कौन निकालेगा? ये निकालेंगे जो फॉरेन फोर्सेस की बुनियाद पर बैठे हुए। ये एक ख्वाब है जो कम अज कम इस वक्त पूरा होने की तरफ नहीं जा सकता। अरब लीग है, अरबों का तो खुद अपना एक अलायंस मौजूद है, फिर क्यों उन्होंने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की जरूरत पड़ रही है? वाजे कि पॉलिटिकल मफादात हैं और वो मफादात वाजे तौर पे किसके साथ अटैच हैं ये भी बहुत वाजे। असल अपनी सर्वाइवल की जंग है और ये जंग बहुत ज़्यादा देर तक जारी नहीं रह सकती।